कि जैसे धरती है या छांव है, छांव जिस प्रकार मुसाफिर को ठहरने में सहायक होती है। अब गरम गरम रास्ते पर तो ग्रीष्मकाल में कोई बैठ नहीं सकता, पेड़ की छांव में ही बैठेगा। तो जिस प्रकार पेड़ की छांव बैठने में सहायक होती है, उसी प्रकार एक दूसरा द्रव्य अधर्म द्रव्य, ये धर्म और अधर्म अपने व्यावहारिक भाषा में जिसको धर्म अधर्म बोलते हैं उससे अलग है। ये छह द्रव्यों में से दो द्रव्यों के नाम हैं, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तो अधर्म द्रव्य क्या करता है, जीव और पुद्गल ये दोनों यदि कहीं ठहरना चाहें या ठहरने रूप परिणत हो तो फिर अधर्म द्रव्य उसमें सहकारी होता है। जैसे आप चलते हुए घर से मंदिर आ गए, धर्म द्रव्य का सहयोग था। अब मंदिर में आकर इस सभा में बैठ गए, अब बैठने में किसका सहयोग है, अधर्म द्रव्य का। बैठे बैठे भी अगर आप एकदम मूर्ति के समान बैठ जाओ, अभी तो आपके हाथ पांव थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, तो उसमें भी धर्म द्रव्य का सहयोग मिल रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल धर्म द्रव्य का सहयोग छोड़ दो, मूर्तिवत हो जाओ, तो अधर्म द्रव्य का सहकार है, पर अंदर जो रक्त संचार हो रहा है उसमें धर्म द्रव्य का सहयोग फिर भी चालू है। लेकिन दिल की धड़कनें हो रही है, स्पंदन है, वो सब धर्म द्रव्य के निमित्त से। और मन वचन काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंद हो रहा है, योग जो चल रहा है, वो योग क्या है, योग का ना मतलब स्पंदन है, हलचली है। वो हलचली भी जो है वो अधर्म द्रव्य के निमित्त से नहीं होगी, वो धर्म द्रव्य के ही निमित्त से होगी। तो इस प्रकार ये द्रव्य जो है, तीन द्रव्य निष्क्रिय है और एक द्रव्य और है जो निष्क्रिय है, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में है। ये तो आकाश एक है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, लेकिन एक द्रव्य और है जो लोक के एक एक प्रदेश पर है, अलग अलग। जैसे रत्नों के डब्बे में या चावल के डब्बे में सब दाने अलग अलग रहते हैं ना, एक दाना दूसरे दाने में मिक्स नहीं होता, उसी प्रकार लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। कालाणु जानते हैं, काल द्रव्य जिसको कहते हैं। फिर अपन जिसको काल बोलते हैं वो तो व्यवहार काल है, दिन रात घड़ी घंटा समय मुहूर्त, ये सब व्यवहार काल, पक्ष माह वर्ष ऐसे बहुत उसके लंबे लंबे विभाग हैं। तो ये कालाणु जो रहता है, सूक्ष्म कालाणु, वो काल द्रव्य है, शुद्ध काल द्रव्य, एक एक प्रदेश पर। अभी भी यहाँ पर अपन एक अंगुल में जो असंख्यात प्रदेश, असंख्यात वे भाग में जो असंख्यात प्रदेश होते, अंगुल का असंख्यातवा भाग, उसमें आकाश के असंख्यात प्रदेश, और कितने असंख्यात प्रदेश कि उसमें असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में जितने समय होते हैं उतने प्रदेश एक इतने से जगह में। तो फिर पूरे लोक में कितने प्रदेश होंगे, बहुत सारे, वो भी असंख्यात है, असंख्यात के असंख्यात भेद है। तो इतने असंख्यात कालाणु होते हैं काल द्रव्य, वो भी निष्क्रिय, वो हिलते डुलते नहीं है, वो जहाँ पर है वो वहीं रहेंगे, उसमें हलचली नहीं है। लेकिन हलचली वाले सिर्फ दो द्रव्य हैं, जीव और उद्गल द्रव्य। उद्गल द्रव्य किसको कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होता है, उसको पुद्गल द्रव्य। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गलाह, ये पुद्गल का स्वरूप है। और जीव किसको कहते हैं, उपयोग लक्षण, जिसमें उपयोग यानी चेतना है। कोई भी द्रव्य जिसके पास चेतना हो वो जीव द्रव्य है। तो जीव अनंतानंत है और पुद्गल उनसे भी अनंत है, उनसे भी अनंत यानी अनंत गुने, क्योंकि एक एक जीव के साथ जितने पुद्गल परमाणु हैं उनका हिसाब लगाओ तो कितने हो जाएंगे, एक जीव के साथ अनंत पुद्गल परमाणु है। कार्मण वर्गणा जो एक समय में आती है, कितनी आती है तो बोलते हैं समय प्रबद्ध प्रमाण। समय प्रबद्ध का अर्थ होता है कि अभव्य जीव जितने हैं संसार में अनंत है, उनसे अनंत गुने वो परमाणु एक समय में अपनी आत्मा में आकर के बंध जाते हैं। और जो सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध भगवान है उनके अनंत में भाग, सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्यों से अनंत गुने कर्म परमाणु एक समय में अपनी आत्मा में आकर के बंध जाते हैं। और फिर अंदर कितने रहते हैं तो डेढ़ समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध उदय में भी आएगा, एक समय में उतने कर्म उदय में भी आ जाते हैं, उतने परमाणु। जैसे क्रोध आ रहा है आपको, मनुष्य गति का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, और क्या क्या त्रस नाम कर्म का उदय चल रहा है, पंचेंद्रीय जाति का उदय चल रहा है, कितने कर्मों का उदय चल रहा है, 40-50 कर्मों का उदय चलता है अभी मनुष्य पर्याय में एक साथ, हिसाब लगाओ तो पता चले। ज्ञानावरण कर्मों का भी उदय चल रहा है, देशघाती स्पर्धकों का उदय किन का चल रहा है, ज्ञानावरण में, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण। अवधि अपने पास है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक अभी इस समय उदय में चालू है, क्योंकि उसका क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम हो जाए तो सर्वघाती उदय में न रहे, देशघाती उदय में हो। तो इस प्रकार अगर अपन हिसाब लगाएं तो कितने कर्म अभी उदय में है। अब जैसे वेद कर्म का उदय है, तो जिसको स्त्री वेद का उदय होगा जीवन भर वही रहेगा, उदय बदल नहीं सकता। शरीर बदल सकता है, अभी आजकल कुछ सर्जरी सेक्स चेंज सर्जरी होती है, लड़की को लड़का बना दे, लड़का को लड़की बना दे। अभी मंडी बामोरा में हम लोगों का चौमासा हुआ था सन 88 में, तो वहां पर क्या था कि दो सहेलियां थी, बचपन से उनके इतनी दोस्ती थी कि उनने सोचा कि अगर शादी हो जाएगी तो हम लोग बिछड़ जाएंगे, तो उनमें से एक लड़का बन गया ऑपरेशन करा करके, और फिर उनने शादी कर ली। ऐसी विचित्र घटना, मंडी बामोरा सागर डिस्ट्रिक्ट में, आधा उसका सागर डिस्ट्रिक्ट में हिस्सा और आधा विदिशा में है, बॉर्डर पर है वो बिल्कुल मंडी बामोरा, तो वहां पर ऐसी घटना हुई। तो शरीर से बदल जाए लेकिन भाव वेद जो होता है वो जीवन में कभी बदलता नहीं है। आज जन्म मृत्यु पंच संग्रह में एक श्लोक आता है, नान्तर्मुहूर्तिका वेदाः सन्ति तत्र कषायवत्, आजन्म मृत्यु तस्तेषाम् उदयो दृश्यते यतः। बोले कि कषाय जिस प्रकार अंतर्मुहूर्त में बदल जाती है, जैसे क्रोध आया किसी को, अब वो क्रोध कितनी देर तक कर सकता, करके बताओ, चलो गुस्सा करके बताओ कितनी देर करके बताते, देखते हैं। अंतर्मुहूर्त से आगे बदल जाएगा, मान कषाय में बदल जाएगा, माया में बदल जाएगा, या लोभ में बदल जाएगा। नियम है, जरूरी नहीं है कि क्रोध के बाद मान ही हो, क्रोध के बाद माया भी हो सकती है। जैसे मान लो किसी शिष्य को गुस्सा आ रहा है, अचानक गुरु आ गया उसके सामने, तो अब ऐसा थोड़ी है कि गुरु के देखते ही साथ गुस्सा समाप्त हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाता है, माया में चेंज हो जाता है, एकदम चेहरे पर नमस्ते महाराज, जैसे कि बिल्कुल क्रोध नहीं हो, एकदम शांत हो गए। तो ये माया कषाय हो गई, मान कषाय भी हो सकती है। जैसे क्रोध आया और सामने वाले ने हाथ जोड़ा, अच्छा भाई माफ़ करो, अच्छा ठीक है जाओ, अब उसने माफ़ किया क्या? माफ़ किया औपचारिक रूप से उसने माफ़ किया, लेकिन कब माफ़ किया? क्रोध शांत होने पर मान माफ़ किया, या फिर क्रोध जब मान में बदल गया तब माफ़ किया? देखिए सोचने की बात है, क्या है कि अपन कर्मों के बारे में चिंतन करो तो बहुत सारी गहराइयां समझ में आती। क्रोध का उदय चल रहा था, अचानक उसने सामने वाले ने, अच्छा सॉरी मैं हार मानता हूं, मैं हारा तुम जीते, जैसे ही उसने बोला कि मैं हारा तुम जीते, तो उसको क्या हुआ? क्रोध कषाय उसकी व्याघात को प्राप्त हो गई उस निमित्त से, नौकर्म से, और अंदर से उदय किसका आया? मान के परमाणुओं का। मान के परमाणुओं का उदय, शक्ति वही चल रही है उसकी, मान रूप कषाय का उदय आ गया, तो मान पुष्ट हो गया उसका। ये देखो झुक गया ना सामने, झुका दिया ना सामने वाले को, आई एम समथिंग, मैं भी कोई चीज हूं, बस मान कषाय हो गए। तो कषाय जो है उसका खेल बहुत निराला है, अंतर्मुहूर्त में कषाय बदल जाती है, लेकिन वेद न आंतर्मुहूर्तिका, आंतर्मुहूर्तिक नहीं होते। तेषाम उदय, उन वेदों का उदय आजन्म मृत्युतः दृश्यते, जन्म से मरण तक एक ही वेद का उदय देखा जाता है। किनके ज्ञान में देखा जाता? केवली भगवान के। मतलब ये हुआ कि जिस क्षण अपन पैदा हुए उस समय अगर अपन ना स्त्री वेद का उदय था तो मरते दम तक स्त्री वेद का ही उदय रहेगा। अगर पुरुष वेद का उदय, शरीर कोई भी हो सकता है, यहाँ कर्म भूमि में आर्यखंड में ये इतनी विशेषता है, पाएण समा कहिम विषमा, गुमट सार जीव कांड में एक गाथा आती है कि अधिकतर तो जिसका शरीर पुरुष का है उसके भाव भी पुरुष जैसे होंगे, अधिकतर जिसका शरीर स्त्री का है उसके भाव स्त्री जैसे होंगे, लेकिन कहीं कहीं विपरीत भी हो सकता है, शरीर पुरुष का है लेकिन भाव स्त्री के होंगे, शरीर स्त्री का है लेकिन भाव पुरुष के होंगे, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है देशभक्ति पे। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे अभी रामायण की कथा में भी वंश वर्णन के अंतर्गत एक सिंहिका रानी की कथा आती है। उसने भी तलवार लेकर के शत्रुओं को खदेड़ दिया था, घुड़सवारी करते हुए शत्रुओं को परास्त कर दिया था। लेकिन फिर पति को ये हो गया कि ये नारी, भारतीय नारी होते हुए भी रणवास की मर्यादा छोड़कर शत्रुओं के साथ युद्ध लड़ने चली गई, ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं खोट होगा। ऐसा राजा के मन में विचार आ गया, तो फिर उसने आहार जल का त्याग कर दिया रानी ने, और फिर देवताओं के आसन कंपित हो गए। वो सती थी, लेकिन अब देश की रक्षा के लिए पति के अभाव में उसने सिर्फ पति का कर्तव्य उसने अपनी तरफ से निभा दिया था, शत्रुओं को खदेड़ दिया था। अब क्या हुआ, अब ये कथाओं की बात चलती तो फिर तो कोई अंत ही नहीं उसका। लेकिन उसने शत्रुओं को खदेड़ दिया, और फिर यहाँ पर ऐसा आरोप आ गया कि इसका शील दूषित होगा, तभी तो ये रणवास की मर्यादा छोड़कर बाहर चली गई शत्रुओं के साथ लड़ाई करने के लिए। तो ऐसी जब शंका हो गई राजा को, तो फिर राजा का मन उससे हट गया, विमुख हो गया, राजा का स्नेह टूट गया रानी से। तब फिर देवताओं ने फिर राजा को सबक सिखाने के लिए दाह ज्वर उत्पन्न कर दिया उसके शरीर में, और दाह ज्वर उत्पन्न करके फिर किसी को सपना दिया कि जो माने सही पतिव्रता और निर्दोष शील की धारण करने वाली स्त्री होगी, महासती होगी, उसके द्वारा जल सिंचन करने पर इसका दाह ज्वर शांत हो जाएगा। तो फिर सैकड़ों लोगों ने आकर के प्रयास किया। अब राजा उस रानी को देखना भी नहीं चाह रहा था। फिर अंत में जब सब हार गए, तो फिर मंत्रियों ने सुझाव दिया कि आप इन रानी का भी एक बार करा करके देख लीजिए। जैसे ही उसने सिंचन किया तो सब ठंडा हो गया, बर्फ जैसा ठंडा हो गया शरीर। तो फिर राजा को लगा कि अरे मैंने सती के ऊपर शंका की थी, फिर शांत हो गया था वातावरण। तो ऐसा होता रहता है, कई बार घर में भी कई बार ऐसे विवाद हो जाते हैं किसी जरा सी बात को लेकर, तुमने उसको पैसे दिए क्यों, ऐसी बात पैसे को लेकर के झगड़े हो जाते हैं। मैं नहीं देना चाहता था उसको, अरे लेकिन देने के थे अपने, वो घर वाले बोलते हैं कि देने के थे लेकिन मुझे नहीं देना था, बोले ऐसी सब फालतू बातों को लेकर राग द्वेष कषाय होती रहती है गृहस्थी में। तो देव और गुरु के लिए भी अगर मुनि धर्म में हिंसा स्वीकार की जाए, तो फिर जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा कि अहिंसा धर्म है, उनकी बात झूठी माननी पड़ेगी। इसलिए जैन धर्म में जैन मुनि को हिंसा किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं हो सकती। और ऐसा जैन धर्म कभी भी पूर्व में मिथ्या दृष्टि जीव ने प्राप्त नहीं किया है, जिसने कभी लब्धियों को प्राप्त नहीं किया, अनादिकाल से उसने आज तक उस जैन धर्म को हासिल नहीं किया। इष्ट है इसलिए हमें पुण्य प्राप्त हो, लेकिन विषयों के सुख की तृष्णा पूर्वक पुण्य की अभिलाषा करने वाला जीव सकषाय रहता है, माने उसके अंदर कषाय तीव्र होती है। विषयों की इच्छा जो होती है वो मंद कषाय में नहीं होती, तीव्र कषाय में होती है। मंद कषाय में उपवास की इच्छा होती है, और तीव्र कषाय में लड्डू पेड़ा बर्फी और फिर नमकीन खाने की इच्छा होती है। कषायों में फर्क है। और फिर इसमें पहले भी गाथा आई थी, कहाँ थी वो गाथा आपको याद है, स्वच्छ और अस्वच्छ भाव वाली। तो इस प्रकार जो धर्म का स्वरूप शंका रहित होकर स्वीकार करता है, उसके पास निशंकित अंग होता है, और उसमें फिर बहुत सारी बातें बताई थी कि अन्य मतों में कितने प्रकार से कहां कहां पर किन किन प्राणियों की बलि चढ़ाने का विधान किया गया है, तो उसका जैन मत में निषेध है। और यशोधर चरित्र अगर आप पढ़ लो, तो फिर उसमें तो बहुत ही खुलासा है कि अपने जो पितर हैं, पितर यानी जो पिता, पिता प्रता प्रपितामह वगैरह जो होते हैं, पिता पितामह प्रपितामह, इनके आत्मा को शांति देने के लिए जो भी कुछ करते हैं अनुष्ठान, जैसे यहाँ श्राद्ध अमावस्या वगैरह करते हैं, और वो कौवे के लिए ऊपर में छत पर खीर और क्या क्या डाल डाल करके उनको वो करते हैं कि भाई कौवों को खिला दो तो फिर उनके जो आत्मा है उनको शांति मिलेगी। तो यशोजा चरित्र में ऐसा बतलाया है कि वो जो राजा यशोधर था उसका लड़का यशोमती था, उस यशोमती ने अपने पिता की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जो बलियां चढ़ाई हैं, वो बलियों में खुद वो पिता का ही जीव जानवर के रूप में हलाल कर दिया गया, खुद वो पिता। तो ऐसे उसमें बहुत सारे कई जन्म जन्मांतरों का उसमें जो वर्णन है उसको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाए, इतना खतरनाक वो है वर्णन। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी सब बातों पर जिसमें कोई प्रमाण नहीं और फिर धर्म के नाम पर जो अंधश्रद्धा कर ली जाती है उनसे अपने को बचना चाहिए। फिर इसके बाद निशंकित अंग के पश्चात निकांक्षित अंग का है, जो सग सुहर्णिमित्तम 416 का था, जो सग सुहर्णिमित्तम धम्मम नायरद दूसह तवेहिं मुखम समीह माणो निखंखा जायदे तस्। उस जीव के पास निष्कांक्षित अंग होता है जो दुस्सह तपश्चरण द्वारा स्वर्ग सुख के लिए धर्म का आचरण नहीं करता। मोक्षम समीह मानो, जो मोक्ष की आकांक्षा रखता है बाकी दुनियादारी के सुखों के लिए धर्म का आचरण नहीं करता, वो निष्कांक्षित अंग का धारी है। दहवे धम्म जुदाणम सहाव दुग्गंध असुई देहेसु जन्निंदन न कीरदे निविदिगिंचा गुणोसु निर्विचिकित्सा। गुण जो होता है 10 प्रकार के धर्मों से युक्त जो मुनिराज हैं उनके स्वभाव से दुर्गंध अथवा अशुचि से युक्त शरीरों के प्रति जो निंदनम न कीरदि, जो अंतरंग में निंदा या ग्लानी का भाव नहीं किया जाता उसका नाम निर्विचिकित्सा है। इसका दृष्टांत आपको याद है, राजा उद्दायन। भयलज्जालाहादो हिंसारंभोण मण्यदे धम्मो जो जिणवयणे लीणो अमूढ दिट्ठि हवे सोदु। अमूढ़ दृष्टि वो होता है जो भय के कारण, लोकलाज के कारण अथवा लाभ की आकांक्षा से हिंसारंभ को धर्म नहीं स्वीकार करता और जिन वचन में ही लीन रहता है। जो पर दोसम गोवदी नियसुकयम जो न पैडदे लोए भवियव भावन रो उपगूहण कारो सोहु। जो दूसरों के दोष को गोवधि गुप्त रखता है और निय सुकयम न पैडवे और अपने सत्कार्य को लोए न पड़े लोगों में प्रकट नहीं करता कि मैंने ऐसा किया था, वहां पर वो कर डाला था, फिर तुम लोग क्या समझते हो मेरे को, मैं मामूली हूं क्या, नहीं मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, ऐसे अपने गुणों को लोक में प्रकट नहीं करता और दूसरों के दोषों को भी गुप्त रखता है। भवियव भावन रहो, भवितव्यता की भावना में रत रहता है कि जो अच्छा हुआ मेरे द्वारा या दूसरे के द्वारा जो बुरा हुआ होना था हो गया, अब उसकी चर्चा करके मैं क्यों पाप कमाऊं? अपनी भलाई की चर्चा करने से अभिमान आता है, और अभिमान पाप का कारण है। याद है एक गाथा आई थी कि पुण्य से सांसारिक सुख मिलता है, वैभव की वृद्धि होती है, और वैभव की वृद्धि से अहंकार होता है, और अहंकार से दुर्बुद्धि पैदा होती है, और दुर्बुद्धि से पाप होता है। इसलिए पुण्य ही पाप का कारण बना कि नहीं? क्या तो वैसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। हमें तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, जो निस्वार्थ भक्ति से पुण्य होता है, उस निष्काम भक्ति का पुण्य व्यक्ति को विषयों में नहीं उलझने देता। उसको अगर सारा वैभव भी मिल जाएगा तो वो दान में निकाल देगा, उसको नहीं चाहिए। अपना काम तो दो रोटी में चल जाता है, फिर इतने सारे प्रपंच से क्या लाभ? ये भावना उसके अंदर आएगी तो उसको सातिशय पुण्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम पुण्यानुबंधी पुण्य। और एक वो है कि जो कामना के साथ पुण्य कमा रहा है, तो उसको क्या होता है कि वो जब पुण्य उदय में आता है तो फिर जिसकी कामना की थी उसके साथ बांध देता है वो पुण्य। उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो विषयों का बंधन अंत तक टूट नहीं पाता और दुर्गति होती। जैसे भूपाल नाम का एक राजा था, उस राजा ने तपस्या की और तपस्या करके फिर निदान बंध बांधा कि मुझे चक्रवर्ती का पद प्राप्त हो, तो उस विशाल पुण्य से, तपस्या के पुण्य से वो बना चक्रवर्ती, लेकिन मर कर नरक गए। दो चक्रवर्ती नरक गए हैं, पता है कौन से? 12 चक्रवर्ती में से शुभम और ब्रह्मदत्त दो चक्रवर्ती नरक गए हैं। तो उसमें ये शुभम चक्रवर्ती था, भूपाल राजा, उस जन्म जिसने निदान बंध बांधा था, चक्रवर्ती पद मिले, नरकगामी हो गया। तो क्यों हुआ नरकगामी? क्योंकि वो पुण्य उनका निष्काम भक्ति का पुण्य नहीं था, उसमें कामना थी, और वो निदान, कामना माने निदान, उस निदान का परिणाम दुर्गति है। तो उसमें ये कहा कि हमें ऐसा पुण्य नहीं होना। कैसा? कि जिस पुण्य से वैभव मिले और वैभव से अभिमान जागे और अभिमान से मति भ्रष्ट हो जाए और मति भ्रष्ट होने पर पाप कमाने लग जाए, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जो आगे पाप का कारण बन जाए। इस प्रकार उन्होंने कथन किया। तो ये उपगुहन करने वाला कौन? कि जो होना था हो गया। क्या? मैंने जो अच्छे काम किए हो गया, वो बीत गया वो समय, मुझे तो और भी अच्छे काम करना है। अगर मैं अपनी प्रशंसा करूंगा तो ये तो बुरा काम हो गया ना। अपनी प्रशंसा करना अच्छा काम है क्या? आदि पुराण में लिखा कि अगर इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो फिर उसके सम्मान में कमी आ जाए। तो फिर अगर आदमी करे तो आदमी की क्या बात है? फिर जब इंद्र जैसा देवों का राजा अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने पर कुछ कम हो जाता है तो फिर मनुष्य की क्या बात है? इसलिए फिर जब मैंने अच्छे काम किए तो उसको मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ, और किसी ने बुरा किया है तो हो गया वो काम। अब जो बुरा, अब उसकी निंदा करने से तो वो मिटने भूसा जाएगा क्या अतीत? किसी ने अतीत में कल कोई गलती कर दी किसी ने, आज आप जी भर के उसकी निंदा कर रहे हैं, तो वो जो कल गलती हुई है वो मिट जाएगी क्या? वो तो जो हो चुका सो हो चुका, तो उसकी चर्चा करके मैं समय क्यों खराब करूं? उपगुहन अंग कितना सुंदर तरीके से समझाया है। फिर धम्मादो चलमानम जो अन्नम संठवेदि धम्ममि अपानम पिसुदृढयदि ठिदिकर्णम होदित सेव। उसी के पास स्थितिकरण अंग होता है जो धम्मादो चलमानम, धर्म से चलायमान होने वाले को, अन्नम किसी अन्य को, धम्मम में संठवेदी धर्म में संस्थापित करता है। धर्म से भटक रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, उसको धर्म में स्थापित करता है। और अपाणम भी, धम्मादो चरमाणम, धर्म से विचलित अगर अपन खुद हो रहे हो तो खुद को भी धर्म में मजबूत करता है वो। उसी के पास स्थितिकरण अंग होता है। अपन अगर धर्म से विचलित हो रहे हो तो कैसे करोगे अपने आप को स्थिर? पता चल गया अपने को कि देखो मेरा मन अब विचलित हो रहा है, अब मेरा मन धर्म में धीरे धीरे कम लग रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना? ऐसी स्थिति में सत्संगति करना। अब धर्म में मन नहीं लग रहा है तो फिर टेलीविजन चालू करके आप बैठे रहोगे दिन भर, तो फिर और नहीं लगेगा मन, जितना लग रहा था वो रहा साहब भी चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, या तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, या फिर सत्संगति करो, या फिर कोई नियम ले लो, या फिर अपने भोजन में देखो आप कि हमारे भोजन में कोई विकृति तो नहीं आ रही, क्योंकि भोजन की विकृति मन को बहुत जल्दी असर डालती है, मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हम भोजन किसके हाथ से ले रहे हैं, उसकी भावनाएं कैसी है देने वाले की, ये सब बातें देख करके फिर ऐसा करो कि भोजन करने के पहले ऐसे बैठ जाओ शांत। कायत सब करते हैं कई लोग, कई लोग नहीं करते, एकदम सीधा टूट पड़ते हैं। अब कौन करे कायत सर्ग, कायत सर्ग अभी कुछ लोग करते भी हैं तो फिर वो बहुत जल्दी करते हैं, आप देखिएगा अभी वैसे अगर कायत सर्ग करेंगे ना तो टाइम देख लेना कितना है, और फिर भोजन के पहले कायत सर्ग करेंगे तब टाइम देखना, फट से कायत सर्ग। तो ये सब नहीं, शांति से करो कायत सर्ग, सिद्ध भगवान का स्मरण करो, और फिर देखो तत्वों का चिंतन करने से भी स्थितिकरण होता है, 12 भावनाओं को भाने से भी अपना स्थितिकरण होता है, और स्वाध्याय करने से भी सद्बुद्धि मिलती है। या फिर अगर किसी हालत से नहीं हो रहा, किसी प्रकार से नहीं हो रहा स्थितिकरण, तो पद्म पुराण में अंजना सती की कथा पढ़ लो, कितना भी दिमाग बिगड़ रहा हो तो दिमाग ठिकाने आ जाए। अंजना सती की अगर कथा पढ़ लोगे आप तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपका मन फिर गलत रास्ते पर जाए। अथवा सीता को जब वनवास देते हैं राम, आखिरी में होता है ना वो प्रसंग, फिर बाद में लव कुश का जन्म होता है, तो वो प्रसंग पढ़ लो। तो अपना स्थितिकरण करने के लिए भी ये सारे बहुत सारे उपाय हैं। प्रमाद ज़्यादा आता हो तो फिर चरणान योग पढ़ लो, वैराग्य में कमी आती हो तो फिर अनुप्रेक्षाएँ पढ़ लो। अब कई साधन है, अगर करना चाहो तो करो, और अगर छोड़ना चाहो तो फिर तो ले लिया ही क्यों, फिर छोड़ना ही था तो फिर लिया क्यों, ये है। तो अपने आपको भी स्थितिकरण प्रदान करना चाहिए और दूसरों को भी। जो धम्मी येसु भक्तो अनुचरणम कुणदि परम सद्धाये पिय वयणम जम्पन्तो वच्छल्लम तस्स भवस्स। जो धार्मिक जनों के प्रति भक्तों भक्ति रखता है, धार्मिक जनों के प्रति यानी साधु जनों के प्रति भक्ति रखता है, अथवा और भी जो व्रती जन है उनके प्रति भी भक्ति भाव रखता है, और परम श्रद्धा है अनुचरणम गुणदि, और परम श्रद्धा के साथ उनका अनुचरण करता है, यानी उनकी जैसी भावना है वैसा ही आचरण करता है, और पिय वयणम जम्पन्तो मीठे वचन बोलता है, तस्स भवस्स वत्सल्यम उसी भव्य के पास वात्सल्य अंग होता है, यानी वात्सल्य में भक्ति शामिल हो गई, श्रद्धा शामिल हो गई, अनुचरण शामिल हो गया, और मीठे वचन भी आ गए। इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे गाय बछड़े से स्नेह करती है निस्वार्थ भाव से, उसी प्रकार पंचेंद्रिय विषय निमित्तम पुत्रकलत्र सुवर्णादि स्नेहवत, पंचेंद्रियों के सुख के लिए पुत्र के प्रति स्नेह रहता है, स्त्री के प्रति स्नेह रहता है, सोने चांदी के प्रति स्नेह रहता है, वो बनावटी नहीं होता, असली स्नेह होता है वो। उसी प्रकार धार्मिक जनों के प्रति सम्यक दृष्टि का वास्तविक स्नेह होता है, उसमें जरा भी बनावट नहीं होती, उसका नाम वात्सल्य है। फिर आखिरी अंग जो है प्रभावना, उसकी चर्चा है। जो दस भेयम धम्मम भव जनानम पयासदे विमलम अपानम पिपयासदे नाणेन पहावणातस। जो दस भेद धर्मम भव जनान प्रयास दे, जो विमल यानी निर्मल दस भेद रूप जो धर्म है, दस लक्षण धर्म, उसको भव्य जीवों के लिए प्रकाशित करता है, यानी दस धर्मों का स्वरूप भव्य जनों में प्रकट करता है, क्षमा की महिमा है, मार्दवादिक है, इनकी अच्छी तरह से प्रभावना करता है, और नाणेन अप्पाणम पे पयासदि, और ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करता है, तस् भावना, उसके पास प्रभावना अंग होता है। और प्रभावना देखिए क्या कही, जिन सासन माहप्पम बहुविह जुत्ति ही जो पयासेदी तह तिव्येण तवेणय पहावणानि मलातस। जिन शासन के महात्म्य को जो बहुत प्रकार की युक्तियों के द्वारा प्रकाशित करता है, और तीव्र तप के द्वारा भी जिन शासन की महिमा को जो प्रकट करता है, तस् पहावणा निम्मला, उसके पास निर्मल प्रभावना अंग होता है। अब इन आठ अंगों का आधार जो जीव है उसको निरूपित कर रहे हैं, जूण कुण दिपर तत्तिम पुण पुण भावेदि शुद्धम अप्पाणम इंद्रिय सुहनिरवेक्खो निसंकायी गुणातस। ये आठों अंग या सम्यक्त के गुण किसके पास होते हैं, तो आचार्य कहते हैं जो पर तत्तिन न कुणदि, जो दूसरों को तपन अर्थात संताप नहीं उत्पन्न करता, दूसरों के लिए जो संताप उत्पन्न मतलब दूसरों को तकलीफ नहीं देता, दूसरों को परेशान नहीं करता, और पुण पुण बारंबार शुद्धम अप्पाणम भावेदि, शुद्ध स्वरूप की भावना करता रहता है, इंद्रिय सुनिरवेक्ष और इंद्रिय सुखों की अपेक्षा नहीं रखता, उसके पास ये गुण होते हैं। निसंका पहुड़ी गुणा जह धम्मे तह ये देव गुरु तच्चे जाने ही जिण मयादो सम्मत्त विसोहया एदे। ये निशंकित आदिक जो आठ गुण जह धम्मे, जैसे दस लक्षण धर्म के विषय में कहे थे ये आठ गुण, तह ये देवगुरु तच्चे, उसी प्रकार ये निशंकित आदिक देव गुरु और तत्व के प्रति भी होने चाहिए। इसलिए जाने ही जिण मयादो, जिन मत से इन निशंकित आदिक गुणों को जान लो, क्यों, क्योंकि एदे सम्मत्त विसोहया, ये सम्यक्त को शुद्ध बनाने वाले हैं, विशोधक है, सम्यक्त को निर्मल करते हैं, और इसी दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। और इनको शास्त्रों से जानो मतलब क्या है कि इनकी कथाओं को भी पढ़ो, निशंकित अंग की कथा में कौन आते हैं, अंजन चोर, निकांक्षित में अनंतमति, फिर निर्विचिकित्सा में बोलो आज भी नाम लिया था उनका राजा उदयन, और अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी, उनकी कथा सुनी है ना आपने, बहुत मज़ेदार कथा, एक एक अंग की बड़ी सुंदर कथा है। फिर क्या था कि जब रत्नकरण श्रावकाचार्य चलता था, सन 88 की बात है, हम लोग पांच महाराज थे, दमोह की बात है, और दमोह में ग्रीष्मकालीन वाचना हो रही थी, तो रत्नकरण श्रावकाचार्य चलता था दोपहर के समय, तो फिर बारी बारी से करते थे, पहले योग सागर जी लेते थे, फिर क्षमा सागर जी लेते थे, फिर स्वभाव सागर जी लेते थे, फिर और एक एलक जी थे वो लेते थे, फिर लास्ट में हमारा नंबर लगता था। तो जब कथाओं की बारी आई तो उन महाराजों ने सबने बोल दिया कि अब कथाओं में तुम्हें ही ले लो, बोले पूरा। तो कथाओं में क्या था कि गुरु जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया धर्म कथाओं के बारे में, क्या था कि हम सारे ग्रंथों का अध्ययन गुरु के आशीर्वाद से हमने किया था संघ में, और वहाँ पर हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण दिन भर हम पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, और रात में जब गुरुजी की सेवा करने जाते थे तो हम पैर दबाते दबाते वो जो कुछ पढ़ा है दिन में उसको फिर अपनी भाषा में आचार्य श्री के लिए सुनाते थे। तो पद्म पुराण की रामायण, हरिवंश पुराण में पूरी जो कथा आती थी वो, ये सब हम आचार्य श्री को सुनाते थे और आचार्य श्री सुनते थे। तो उनका सुनना ही हमारे लिए एक अभ्यास हो गया हमारे लिए, तो इसलिए फिर ये कथाओं को सुनाने में हमारी गति होने लग गई। और इसलिए फिर उन महाराजों ने हमसे कह दिया कि अब तुम ही लेना, बोले आठ अंगों की कथा तुम्हारे ऊपर। तो उसमें फिर ये आठ कथाएं बड़ी सुंदर कथाएं, अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा आती है, फिर उपगुहन में जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा आती है, और स्थितिकरण में वारिषेण मुनि की कथा आती है, फिर वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि की, और प्रभावना में वज्र कुमार मुनि की कथा आती है। तो इसलिए निशंकितादिक गुणों को शास्त्रों से बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जैसे दस धर्मों के प्रति निशंकता है आदि है, और वैसे ही देव शास्त्र गुरु तत्व के प्रति भी होनी चाहिए। धम नम धम्मम नम उणदि जीवो आवा जाने कहव कठेन काउंतो विण सकदि मुह पिसाईन भोल विदो। बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी कि पहली बात तो यह है कि जीवो धम्मम न मुनेदि, जीव धर्म को समझ नहीं पाता, और कह भी कठेण जाने ही, अब जानता भी है तो बड़ी मुश्किल से धर्म को समझ पाता है। पहली चीज तो धर्म को समझता ही नहीं, और समझ भी जाए तो बहुत मुश्किल से समझता है, और तो भी काउम न सक्कर आचरण करने में तो बिल्कुल समर्थ नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मोह पिसायण भूल विदो, मोह रूपी पिशाच ने इसको भटका रखा है, इसकी बुद्धि को भ्रमित करके रखा है, इसलिए ये धर्म से विमुख रहता है। जह जीवो कुण हिरईम पुत्त कलते सुकाम भोगेसु तह जय जिणिंद धम्मे तो लीलाए सुहम लहदी। तुलसीदास और रत्नमाला की कथा सुनी आपने? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? वो बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी में। एक बार वो ससुराल गई तो फिर ये ससुराल चले गए उनके पीछे पीछे रात को, और नदी में बाढ़ थी तो फिर वो ऐसे किसी कुछ देख करके उसको लट समझकर ऐसे निकल गए, और फिर जब उस किनारे पहुंचे तो फिर ऐसे उसको देखा तो वो दब रहा था, तो वो लाश थी किसी की, मुर्दा था वो। फिर वहां पर पत्नी का कमरा ऊपर था घर पर, तो फिर वो एक रस्सी पकड़कर चढ़ गए, फिर जैसे ही ऊपर पहुंचे तो देखा कि अरे ये तो सांप है। फिर पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि तुम यहां आ गए, तो बोले कि बहुत कठिनाइयों को पार करके मैं यहां आ गया, मुझे तुम्हारा स्नेह यहां खींच लाया। बोले तो बोले कि कौन सी कठिनाई पार की? बोले एक तो बारिश थी, आंधी तूफान था, और नदी में बाढ़ थी, और फिर लाश को पकड़ करके मैं लकड़ी समझकर इस तरफ आ गया, और उसके बाद जब यहाँ चढ़ने लगा मैं ऊपर तुम्हारे कक्ष तक, तो दरवाजा खटखटा कर नहीं आया, मैं तो यहाँ से चढ़ करके आया हूँ, बोले दूसरे रास्ते से, और वो भी सांप था, बोले मैं रस्सी समझ कर आ गया, भाग्य से काटा नहीं सांप ने। तब उसने क्या जवाब दिया? जैसी प्रीत हराम सो तैसी हरी सो होए, चले जाओ बैकुंठ में बात न पूछे कोई। बोले मैंने जैसे तुम्हारी इस मतलब हार्ड मास की काया के प्रति जो प्रीति है तुम्हारी, मेरी सुंदरता को तुम्हारा जो प्रेम है, वैसी प्रीति अगर तुम्हारी भगवान से हो जाए तो फिर तुम बैकुंठ चले जाओ, स्वर्ग को प्राप्त कर लो, कोई शंका करने वाला भी ना हो कि तुम्हें स्वर्ग मिला कि नहीं मिला, निश्चित तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। तो तब से फिर तुलसीदास ने छोड़ दिया उनको, घर बार सब त्याग दिया, और उसके बाद फिर वो हरिभक्त बन गए। ऐसी कथा आती है। यहाँ पर बात कह रही है जीवो जह पुत्त कलत्तेसु काम भोगेसु रईम कुणई। जिस प्रकार जीव पुत्र स्त्री के प्रति काम भोगों के प्रति प्रीति करता है, तह जई उस प्रकार की प्रीति यदि जिनेन्द धम में की रही, जिनेन्द्र भगवान के धर्म में कर ले, तो लीलाए सुहम लदी, बिल्कुल खेल खेल में उसको मुक्ति का सुख प्राप्त हो जाए। 428वीं गाथा, बड़ी प्रति में 322वां पृष्ठ। लक्ष्म वंची नरो नीव सुधम में स्वायरं कुणै बीएन विना कथवि किंदी सदिस निपत्ति। बोले मनुष्य लक्ष्मी चाहता है लेकिन सुधर्मों के प्रति, 10 धर्मों के प्रति आदर नहीं करता। क्या कहीं बीज के बिना धान्य की निष्पत्ति दिखाई देती है? यानी जिस प्रकार बीज के बिना धान्य उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार धर्म के बिना लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। जो धम्मत्थो जीवो सौर्यो वग्गे विकुणै खम भावम तापरदव्वं वज्जै जननि समं गणै परदारम। जो धर्म में स्थित जीव होते हैं, यानी जो रत्नत्रय को धारण करने वाले होते हैं, वो रियो अग्गे भी खम भावम कुणी, शत्रु वर्ग के प्रति भी क्षमा भाव करते हैं, और वज्जई परद्रव्यम, परद्रव्य को छोड़ते हैं, बचते हैं उससे, और परदारम जननी समम गणई, पर स्त्री को माता के समान गिनते हैं। तासवत्थ विकित्ति तासवत्थ विहवे वी सासो तासवं पिय भासई शुद्धं मानस ताशुद्धं मानसं कुणई। यानी जब तक जीव धर्म में स्थित रहता है, तब तक शत्रु के प्रति भी क्षमा भाव धारण करता है, पर द्रव्य को दूर से ही छोड़ देता है, और पर स्त्री को जननी के समान गिनता है, और तब तक उसको सर्वत्र कीर्ति उपलब्ध होती है। देखो, मुनि अवस्था में अपकीर्ति नहीं होती। अगर भावलिंगी मुनि है तो ये नियम है कि अगर व्रती भी भावों से व्रती होगा, पंचम गुण स्थान वाला होगा, तो अयश कीर्ति का उदय नहीं होगा। कर्मों की उदय विच्छित्ति, बंध विच्छित्ति, सत्व विच्छित्ति और उदीर्णा विच्छित्ति, ऐसे 4 प्रकरण आते हैं। तो उनमें कर्मों का उदय किन गुण स्थान तक होता है और किन कर्मों का उदय कहाँ तक होता है, तो उसमें बताया कि अनादेय, दुर्भग और अयशस कीर्ति, इन 3 कर्मों का उदय 4थे गुणस्थान के ऊपर नहीं होता। अनादेय का मतलब कोई उसको स्वीकार न करना चाहे, अथवा उसके शरीर में तेज बिल्कुल न हो, ये स्थिति व्रति में संभव नहीं है। अगर भावों से व्रती हो तो अनादेय और दुर्भग, दुर्भग का अर्थ होता है अप्रिय लगना। अगर सच्चा व्रती होगा, भावों से व्रती होगा, तो वो अप्रिय नहीं लगेगा। ये एक सर्व सामान्य परिणाम है। अब कोई व्यक्ति विशेष द्वेष रखने वाला हो तो बात अलग है, कमट जैसा। कमट को पार्श्वनाथ भगवान अप्रिय थे, दुनिया को प्रिय थे, तो वो पार्श्वनाथ भगवान का कर्मोदय नहीं था, उसकी दुर्बुद्धि का उदय था, ठीक है ना। तो कभी भी व्रती, अगर भावों से व्रती हो तो किसी को अप्रिय नहीं लगेगा, उसके शरीर, उसका शरीर आभार रहित नहीं होगा, वो आदे माने कांति युक्त होगा। और तीसरी बात यह है कि उसका अपयश नहीं होगा, उसकी अपकीर्ति नहीं होगी। तो ये मतलब भावलिंगी मुनि की बात है, और भावलिंगी मुनि की तो बात छोड़ो, अगर गृहस्थ भी 11 प्रतिमाओं का धारी और भाव से पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसमें भी ये 3 कर्म उदय में नहीं आएंगे। और सीता का जो अपयश हुआ था उस समय उनका गुणस्थान निश्चित ही पंचम गुणस्थान नहीं था। जो अपकीर्ति हुई और उसके साथ में उनको फीलिंग भी हुई ना, उनको वेदना भी इस बात की हुई थी, तो ये जीव विपाकी कर्म, यश कीर्ति जो कर्म है ना जीव विपाकी है, और ये आदे वगैरह जो है पुद्गल विपाकी है। शरीर चमक रहा है तो ये आत्मा में उसका फल नहीं है, शरीर में उसका फल है।